मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां अधिकार तक अपनाए हैं। पिछले छह अधिकारों में, पहले अधिकार में तो मंगलाचरण की ही चर्चा थी, ग्रंथ का स्वरूप, ग्रंथ की प्रमाणिकता, पंच परमेष्टि का स्वरूप, वाचना सुनने योग, शास्त्र, वक्ता, श्रोता, इतनी बातें पहले अध्याय में कही थी। तो दूसरे अध्याय में जैसे कि वैद्य निदान करता है ना बीमारी का, ऐसे ही आखिर संसारी जीव को बीमारी क्या है इसका निदान किया था। इसमें कर्म बंधन है, अनादि से है, नवीन बनता है, सत्ता में कैसे रहता है, उदय में कैसे आता है, और उन कर्मों के उदय से क्या क्या दशा दुर्दशा होती है, उस सब का वर्णन किया था। फिर ये बताए संसार अवस्था में ये जीव दुखी ही है, और दुख उसके लिए विस्तार से दुखों का वर्णन किया था, कर्मों की अपेक्षा और फिर गतियों की अपेक्षा। और उसके बाद में यदि मुक्ति का सुख है तो मोक्ष में ही है, ये बताया था। फिर बाद में चौथे अध्याय में अघीत मिथ्या चारित्र का वर्णन हुआ, चार प्रकार की इच्छाएं बताई थी उसमें। चौथे अध्याय में अघीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन किया। अघीत माने जो बाद में ग्रहण नहीं किया, अनादि से ही इस आत्मा के साथ में है, परमेय एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, जो एक इंद्रियादिक की पर्याय में भी अव्यक्त रूप से पाया जाता है, उसकी चर्चा की। और फिर पांचवें अध्याय से गृहित मिथ्या दर्शन की चर्चा शुरू हुई जो अभी तक चल रही है। उसका वर्गीकरण उन्होंने ऐसे किया कि पहले जैनेतर मतों की समीक्षा की, जिसमें सर्व अद्वैत ब्रह्म है, ईश्वरवाद है, और जो मत भारत में प्रचलित हैं उनकी समीक्षा की। और उसके बाद जैन दर्शन की अन्य दर्शनों के तुलना की, और तुलना में एक ही बात मुख्य थी कि जैन दर्शन वीतरागी दर्शन है और बाकी के दर्शन राग में धर्म बताने वाले दर्शन है। फिर जैनेतरों के उल्लेख के माध्यम से जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध की, और बाद में श्वेतांबर मतों का के बारे में भी विचार इसी पांचवें अध्याय में किया, इसमें स्थानक वासियों की भी चर्चा की। छठवें अध्याय में दिगंबर धर्म में आ जाने के बाद भी, दिगंबर कुल में पैदा हो जाने के बाद भी, और अपने लिए दिगंबर जैन कहकर गौरव अनुभव करने के बाद भी, उस दिगंबर धर्म के नाम पर लड़ने मरने के लिए भी तैयार, इतनी कट्टर दिगंबरता आ जाने के बाद में भी, कुदेव कुशास्त्र और कुगुरुओं की किस तरह आराधना करते रहते हैं, उन सब की विस्तार से चर्चा की, जिसमें क्षेत्रपाल, पद्मावती वगैरह की बहुत सब बातें विस्तार से आई। और अब ये कहते हैं कि सातवें अध्याय में कि शास्त्र का अभ्यासी हो गया और अंदर में ऐसी दृढ़ता आ गई कि माथे पर धड़पर गर्दन रहे तो रहे और ना रहे तो ना रहे, लेकिन तो भी कुगुरु कुदेव के चरणों में वंदना नहीं करूंगा, इतनी दृढ़ता आ गई। उसके बाद भी उसके अंदर में मिथ्यात्व तो कायम रहता है, उसकी चर्चा अब सातवें अध्याय में आरंभ हुई, क्योंकि सुमिथ्यात्व नामा बैरी का सूक्ष्म अंश भी त्यागने योग्य है। तो वो कहां कहां ऐसी गड़बड़ी रह जाती है, तो वो बात वो कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि हमारे समस्त जनागम में जो भी वर्णन है वो निश्चय और व्यवहार नय की अपेक्षा से है। निश्चय और व्यवहार नय का जो सच्चा स्वरूप है उसे तो ये जगत जानता नहीं है, और उन शास्त्रों के उन कथनों को पढ़कर और एकांत ग्रहण करके अरे फिर मिथ्यात्व को कायम रख लेता है, पर कहता है मैं तो शास्त्र में पढ़ा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी मान रहा हूं। इसलिए उन्होंने कहा एक किन लोगों की चर्चा है कि जे जीव जैनी हैं और जिनाज्ञा को मानते हैं। माने ऐसा नहीं है कि वो कोई शास्त्र की बात आए तो ये कहें कि ये बात सच्ची है कि झूठी। 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत लिखा है तो होगा कि नहीं, कि उन जैनियों की बात नहीं है। वो कहते हैं कि 1 लाख योजन का लिखा है तो पक्का है ही, इसमें तो कोई शंका की बात है नहीं। कि जिन आज्ञा को मानने का अर्थ यह है, माने वे शास्त्रों के प्रति बड़े श्रद्धावान हैं। कभी कभी मैं ये कहता हूं कि जिन निश्चयाभाषी व्यवहाराभाषियों का वर्णन यहां है, आज यदि हम देखें तो ये सम्य दृष्टि मिलना तो बहुत दुर्लभ है, ये निश्चयाभाषी और व्यवहाराभाषी मिलना भी बहुत दुर्लभ है। क्या मतलब मैं कहना चाहता हूं, ये तो इतने कट्टर होते हैं कि आगम के प्रति श्रद्धा के वाले, कि आगम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते हैं, उनकी आगम की बात आ जाए तो शर्मा से स्वीकार करते हैं। बोलो आज कितने लोग ऐसे हैं जो आगम की बात को शर्मा से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सबके चित्त में आगम के प्रति शंकाएं आशंकाएं खड़ी हो गई हैं, और क्षुद्र क्षुद्र बातों में, दही में तो साहब अनंत जी ने, उसे तो आपने भक्ष कहा, आलू में तो जीव दिखाई नहीं देते, आलू को अभक्ष कहा, मैंने उसे आलू खाना है और दही भी खाना है, तो दही के बहाने आलू खाने की पुष्टि करने के लिए भगवान की वाणी में भी शंका करेगा। पहले यदि किसी को खाना भी होता था ना तो वो कह रहा है मेरी गलती है, मेरे से नहीं छूटता है, लेकिन छोड़ना तो चाहिए, तो कम से कम श्रद्धा तो ठीक रहती थी। आज वो श्रद्धा को भी विकृत करता है, तो उसे आगम में आस्था कहां रही। ये जो जीव जैनी है और जिन आज्ञा को मानते हैं उनकी बात है, और इनमें जितनी भी भूलें रह जाती हैं, जिनको पंडित टोडामल जी हैं बताने वाले हैं, वे सब भूलें नई हैं, शैनी पंचेंद्री होने के बाद में नई पैदा की हैं, इसलिए तो वे ग्रीक में छात्र हैं, और वे शास्त्र पढ़कर की हैं। गजब की बात तो ये है, 6वें अध्याय तक की जो भूली थी वो तो कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र के निमित्त से हो रही थी भूलें, और यहां तो सुगुरु सुदेव और सुशास्त्र के निमित्त से होने वाली भूलों की बात है। क्या कैसी बात करते हो, गलत रास्ते पर तो कुगुरु चढ़ाएंगे, सुगुरु थोड़ी चढ़ाएंगे। गलत रास्ता तो हम खोटे शास्त्र पढ़ करके अपनाएंगे, सच्चे शास्त्र पढ़ करके गलत रास्ता हम कैसे अपना सकते हैं। तो कहते यही तो गजब हो रहा है कि तुम्हें सच्चे देव सास गुरु मिल गए, उनके प्रति तुम्हारे हृदय में अटूट आस्था हो गई, और किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गुरु कुदेव के नहीं नमने के लिए, और फिर भी गलती रह जाए तो इससे ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है। तो वो कहते हैं कि ये गलती कैसे रहती है। पंडित जी ने सबसे पहले नब्ज तो ये पकड़ी कि निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप नहीं जानते हैं, इसलिए ये गड़बड़ी रह जाती है। और जिनवाणी में सारा वर्णन निश्चय व्यवहार का इसमें लिखा था, वो पहले वाक्य है कि वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है, इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं वही कहते हैं। इसका मतलब पूरा वर्णन ये निश्चयाभाषी के ऊपर हेडिंग है, तो निश्चयाभाषी का भी यही भूल, व्यवहाराभाषी की भी यही भूल, और उभयाभाषी की भी यही भूल, और सम्यक के सम्यक दृष्टि को समय समय प्राप्त नहीं किया है तो वहां भी कोई कचास है, तो इसी बात की है। हमारी कहने निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझने के कारण ही सारी गड़बड़ी है। कितना वजन दिया है। तेरी तुम्हें ये भूल निकालना है तो इस नयों के स्वरूप को अच्छी तरह समझो। अब आप बोलो कि भी नयों का जानना जैन दर्शन में आत्मा के कल्याण के लिए जरूरी है कि नहीं। इस वाक्य से क्या सिद्ध होता है कि एक वाक्य भी जिनवाणी में नयों के बिना नहीं है। और हमारी जितनी गलती हो रही है शास्त्र पढ़ने के बाद वो नयों का स्वरूप नहीं जानने के कारण हो रही है। अब उसमें वो कहते हैं हम पहले निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि नयों का स्वरूप नहीं जानने के कारण कैसी गलती करता है। वो निश्चय नय का वास्तविक स्वरूप जो कथन है उसको नहीं जान पाता है, व्यवहार के कथन को भी नहीं पहचान पाता है। इसलिए शास्त्र को पढ़ करके भी सबसे पहले निश्चयाभासी कैसी भूल करता है इसकी चर्चा वो यहां कर रहे हैं। देखो इसमें सबसे पहली भूल तो वो ये कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्रों में निश्चय नय की प्रधानता से एक बात बहुत आती है कि सिद्ध समान सदा पद मेरो, मम स्वरूप है सिद्ध समान। तो ये बात सुनकर के वो अपने को वर्तमान पर्याय में सिद्ध ही मान लेता है। वहां तो लिखा था सिद्ध समान और ये सिद्ध ही मान लेता है। तो मैं तो सिद्ध बुद्ध हूं, रागादिक मेरे में है ही नहीं, मैं तो केवल ज्ञान से संयुक्त हूं। ये सबसे बड़ी है कि ये निश्चय नय का कथन जैन दर्शन में था। उस सिद्धों का उल्लेख तो सिर्फ इसके लिए किया गया था कि जैसे सिद्ध भगवान पर्याय में प्रकट हो गए हैं पूर्ण निर्मल, वैसे ही तेरा स्वभाव है, तुम अभी पर्याय में वैसा हुआ है ये नहीं कहना था। पर्याय से पर्याय की समानता की बात नहीं थी, सिद्ध भगवान की पर्याय और तेरी पर्याय में समानता की बात नहीं थी। अपना द्रव्य स्वभाव और उनका पर्याय स्वभाव, उनसे मिलान करने की बात थी क्या? तो इसने उनकी पर्याय से अपनी पर्याय को मिलान कर लिया। और जैसे सिद्ध भगवान के वर्तमान में रागादिक नहीं है, मति ज्ञानादिक नहीं है, केवल ज्ञान है, पर ऐसे ही अपने को भी रागादिक से रहित, मति ज्ञान से रहित और केवल ज्ञान से सहित मानने लगा। ये सबसे बड़ी भूल वो हुई। तो उनने तो समान कहा था कि सभी आत्मा समान है, तो वो कहते तुमने कह दिया था ना, तो हमने द्रव्य से द्रव्य का मिला लिया, पर्याय से पर्याय का। तो कहते नहीं, मिलाना ऐसा था कि उनकी पर्याय और अपना द्रव्य। क्यों? द्रव्य भी उनका वैसा ही है, लेकिन द्रव्य तो हमारा और तुम्हारा सबका ही है, निगोदिया से भी वैसा ही है। तो सिद्धों की बात की तो उनकी पर्याय में जैसा प्रकट हो गया। देखो कैसे, ये जो निर्मा वाले हैं ना टीवी पे, ये दिखाते हैं क्या नहीं दूध सी सफेदी, तो एक कपड़े को धो करके बताते हैं पहले उसी का दो कपड़े हैं, दोनों एक से मेले हैं, तो दोनों को बताते देखो ये। फिर एक कपड़े को धोकर बताते हैं कि देखो ये कितना साफ निकला है और ये कितना मेला है। क्यों? फिर एक कहते हैं कि ये जो साफ निकल आया है ऐसा ही साफ ये मेला कपड़ा भी है, क्या आप खरीदना हो तो खरीद लो, इसमें कोई खराबी नहीं है। इतना गंदा रहेगा कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा ही है तो अभी मेल से रहे थे क्या? अभी तो मेल चढ़ाई है, माने इसका स्वभाव ऐसा है कि हमारे निर्मा में धोगे तो ये ऐसा निकल आएगा, ऐसा ही है। तो जो कपड़ा धुला है उसकी तो धुली हुई पर्याय, और जो कपड़ा मेला है उसका धुले हुए जैसा स्वभाव, उनका मिलान करना था। और इस बात को वो मिलान नहीं कर पाया, बस खत्म। उस नए के उस कथन को मिलान ढंग से नहीं कर पाया तो बस गड़बड़ हो गई। जरा सी गड़बड़ी में बहुत अनर्थ की परंपरा हो जाती है। एक साधु ने एक गृहस्थ को सोने बनाने की विधि बताई, अपने समय साल में भी आई थी, एक गाथा में आई थी ना, जैसे ना तारी की, अपने प्रवचन हुए थे ना यहां पर, उसमें सोने बनाने की विधि लिखी हुई है। तो उसने सब बातें बताई और उसी विधि के अनुसार उस ग्रस्त ने सोना बनाया तो सोना बना नहीं, तो वो उसके पास गया कि ऐसा हमने सब किया लेकिन सोना तो बना नहीं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सोना तो बने बनेगा ही जब ऐसी विधि से कह रहे हो कि संपन्न। तो कहा मेरे सामने बनाओ। तो उसके सामने वो बनाने बनाने लगा, उसमें था कि ऐसी परिस्थिति आने पर उसमें अपने हाथ से नींबू निचोड़कर, ऐसा था हाथ से भी कैसे, ऐसे दोनों हाथ के बीच में नींबू दबा करके ऐसे निचोड़ के डाल देना, ऐसा उसने बताया था। तो उसने लेकर एक चक्कू से नींबू काटा, वैसे डालने लगा। फिर बस यही तो गड़बड़ हो गई। मैंने तुमको कहा था ना कि नींबू को लेकर दोनों हाथ से ऐसे निचोड़ के डालना, माने उसमें लोहा नहीं लगना चाहिए। अब तुमने चक्कू से उसे काटा तो लोहा लग गया, बस अब बनी मैंने, मैंने उसने ये कहा ना इस तरह हाथ से निचोड़ के, तो उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, बस काट के डालना नींबू का रस डालना। अब कैसे डालना, ऐसे डालना कि ऐसे डालना, इससे क्या फर्क पड़ता है क्यों? तो इतनी सी भूल कहीं रह जाएगी तो फल नहीं निकलेगा। तो कितनी सावधानी की जरूरत है उस बात को समझने की। उन्हें सिद्ध समान कहा था कि ये बताने के लिए कि चिंता की कोई बात नहीं है, तेरा आत्मा भी उतना ही परम पवित्र है जितने सिद्ध भगवान है, और जिस विधि से बेपर्याय में प्रकट हो उस विधि से तू भी हो जाएगा। तो वो विधि वाली बीच की बात तो उसने दिमाग में से निकाल दी, और मैं तो अभी हुई वैसा ही। उनने भी कहा था अभी है शुद्धि तेरे अंदर, अभी है, तुझे मतलब ना कि वो आएगी, निर्मा में से आने वाली नहीं है वो सफेदी, वो सफेदी तो कपड़े के अंदर विद्यमान है, निर्मा तो मेल निकालेगा। ऐसे ही जो तेरी तपस्या अधिक होंगे वो तो मेल को निकालेंगे, और स्वभाव तो तेरे अंदर में ही विद्यमान है, ये बात बताई थी। तो उसने वर्तमान पर्याय में अपने को सिद्ध समान मान लिया। ये निश्चयाभासी की नंबर एक की भूल है। अब एक नंबर की जो भूल है ये दो रूप में फिर फलती है। सिद्ध समान कहां, तो अपन बोलते हैं भगवान के लिए कि भी भगवान सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं। सर्वज्ञ वीतरागी दो विशेषण है ना, तो वे सर्वज्ञ थे माने उन्हें केवल ज्ञान था, तो अपने को इसने केवल ज्ञानी मान लिया, और वो वीतरागी थे तो अपने को वीतरागी माने, दो भूलें हो गई। अब तो पंडित जी यहां कहते हैं टोडा मंजी बिना अभी पढ़ेंगे कि जो मति ज्ञान आदि हैं उन्हें तो मानता नहीं है कि वो हैं, और जो केवल ज्ञान अभी नहीं है उन्हें मानता है कि है। अरे सिद्ध भगवान के तो अभी केवल ज्ञान है और मति ज्ञान अधिक नहीं है, और वे अपने को उनके समान कह करके मति ज्ञान अधिक से रहित और केवल ज्ञान अधिक से सहित मान लिया। और दूसरी कि जो राग अभी विद्यमान है उन राग देश से तो रहित मान लिया, और जो वीतरागता अभी नहीं है उस वीतरागता से अपने को सहित मान लिया। ये निश्चयाभासी का दोष है, राग देश तो मेरे में है ही नहीं, मेरे को क्या लेना देना, और राग देश कब तक कर रहा, गालियां बक रहा मुंह से, तो ये तो जड़ की क्रिया है, तो शरीर की क्रिया है, तो पुद्गल का परिणाम है जो आवाज निकल रही है, और राग है वो तो आश्रव तत्व है, मैं तो हूं नहीं, मेरे से जुदा तत्व है। ये भाषा तो बिल्कुल सही है, आगम की भाषा है, कि ये भाषा बदलना का काम है जो आवाज निकल रही है, हैं? और ये बात भी सच्ची है, वो जो तेरे को भाव है वो आश्रम भाव है, और वो त्रिकाली जो भगवान आत्मा जो दीप तत्व है उससे जुदा है। ये जो शास्त्र की बातें हैं ये तो 100% सत्य है ना, लेकिन उनकी अपेक्षा तो स्वभाव की है ना, कि तेरा स्वभाव है ऐसा, लेकिन जो पर्याय की अपेक्षा बात करे तो वर्तमान में पर्याय तो राग विद्यमान है और मति ज्ञान विद्यमान है। वो तो वर्तमान में पर्याय जो विद्यमान है उसको गौण करके और द्रव स्वभाव को मुख्य करे तब वो उसे कहता है कि सिद्ध समान है, तो तूने मुख तो कर रहा है पर्याय को और मान रहा है सिद्ध समान। कि राग को गौण करना चाहिए था ना, लेकिन राग को तो गौण तो करता नहीं है, मति ज्ञान को गौण तो करता नहीं है, वो तो उस दृष्टि से थी। तो इसकी चर्चा पंडित जी ने यहां विस्तार से की है। देखो कितने ही जीव निश्चय को ना जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी हैं और भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। वही मिथ्या दृष्टि है का अर्थ क्या? ये मिथ्या दृष्टि मैंने कोई व्यक्ति की बात नहीं है, ये वही उनकी दृष्टि का मिथ्यात्व है। अब अगर यही तुम्हारी भूल है, वही मिथ्या दृष्टि है माने, जब हम कहते कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, ये ऐसा मिथ्या दृष्टि नहीं है। उस मिथ्या दृष्टि में और इस मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क है? वो मिथ्या दृष्टि होगा तो टी की ई बड़ी होगी, समझे, मिथ्या दृष्टि ई, और जो मिथ्या दृष्टि जो ई की छोटी मात्रा है ना, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। वो बड़ी ई की मात्रा होती है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, और ये भाववाचक है, ये दृष्टि का मिथ्यात्व है। वही मिथ्या दृष्टि है माने वही तेरी जो दृष्टि है वो मिथ्या है। वही माने वह व्यक्ति नहीं, वही माने जो तेरी ये मान्यता है, जो तेरी ऐसी दृष्टि है, वो तेरी दृष्टि वो मिथ्या है। कि जो वर्तमान लिखा ना, अब ये बात कई दफे आएगा, जो यहां है ना, फिर आगे फिर नीचे अगले पैरा में है, सो यही मिथ्या दृष्टि है। फिर अगले पैरा में आएगा द्वितीय से पैरा के अंत में, सो यही मिथ्या दृष्टि है। एक दफे समझ लो उसे सही, एक कई दफे आने वाला है बात। मिथ्या दृष्टि है माने ये तेरी भूल है, यही तेरी मिथ्या दृष्टि है माने ये तेरी भूल है। तो नंबर एक की भूल कौन हुई? कि आप प्रत्यक्ष संसारी है और भ्रम से अपने को सिद्ध समान मानता है, यही तेरी नंबर एक की भूल है माने ये तेरी मिथ्या दृष्टि है, ये कह रहे हैं। और ये सातवें अध्याय में इसका नंबर क्यों आया? क्योंकि ये शास्त्र पढ़कर तूने ये बात मानी है, क्योंकि मां के पेट से नहीं सीख के आया था कि मैं सिद्ध समान हूं। क्यों? ये तूने अनादिकाल की नहीं है, अनादिकाल की तो मान्यता है ही, लेकिन ये जो तूने यहां जो पुष्ट की है ना, वो शास्त्र से पढ़ के पुष्ट की है, इसलिए तो ये गीत में चाहत है। और जैन शास्त्रों को पढ़कर की है, गजब की बात है। मैंने सच्चे शास्त्रों को पढ़कर तूने एक गलती की है, तो मैं तो कहता हूं उससे तो बेमिथ्या दृष्टि अच्छे, क्योंकि खोटे शास्त्रों को पढ़कर तो अपनी दृष्टि करी। तू तो इतना महान है कि सच्चे शास्त्र तेरे हाथ लग गए और फिर भी तूने अपनी खोटी मान्यता की पुष्टि उससे की। दो भाई भाई लड़ते थे, क्यों लड़ते हो? सीधे सच्चे लड़के तो ये कहते हैं, उसने मेरा ये खरीद लिया, मेरा ये नहीं दिया, मेरा ये लिया, मेरा ये छीन लिया। और ज्यादा होशियार होने लगे, पड़ोस के बच्चे भाई भी बेटे लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं। और ज्यादा होशियार होते हैं तो भरत बाहुबली भी लड़े थे, इसलिए हम भी लड़ते हैं। तो सबसे गजब तो तुमने किया कि तुमने शास्त्र में से लड़ने का रास्ता निकाला, जो शास्त्र कभी नहीं लड़ो इसके लिए बनाए थे। लड़ाई के कितने दुष्परिणाम होते हैं ये बताकर तुम्हें लड़ाई से विरक्त करने के लिए जो शास्त्र बनाए थे, उनमें से तूने अपने लड़ाई लड़ने की बात को पुष्ट किया, तो सबसे ज्यादा नालायक हो गया क्या? नहीं तो एक दृष्टि से कि हम सबसे ज्यादा अभागे हो गए कि जैन शास्त्र हमारे हाथ लग गए और उसमें से भी हमने खोटी बात की पुष्टि की, एक हो गया। दूसरा देखो, शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह तो दिव्य दृष्टि से कहा है ना, और ये पर्याय अपेक्षा शुद्ध समान तो नहीं है। जैसे राजा और रंक मनुष्य अपेक्षा समान है, परंतु राजा और रंक पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध संसारी जीवत्व की अपेक्षा समान है, कि देवी जीव है और हम भी जीव हैं, ऐसी समानता थी। परंतु सिद्ध पने और संसारी पने की अपेक्षा तो समान नहीं है, तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं वैसा ही अपने को शुद्ध मानते हैं, परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो यही मिथ्या दृष्टि है, ये भूल है। वो तो द्रव्य की अपेक्षा माननी थी, जैसे माना ना कि राजा और हम एक है, रंग समान है, तो दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही जीव हैं, दोनों ही सैनी हैं, दोनों ही पंचेंद्री हैं, दोनों ही पुरुष हैं, इस अपेक्षा समानता थी। पैसे की अपेक्षा थोड़ी समानता है, पद की अपेक्षा थोड़ी समानता है ना। अब देखिए, एक तो सिद्ध अवस्था की बात हुई, अब उसके डिटेल में जाते हैं। तथा अपने को केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानते हैं, क्योंकि सिद्ध समान है, सिद्ध केवल ज्ञान है तो हमारे भी केवल ज्ञान होगा। राजा और रंक समान है तो रंक का ही समान है, वो मनुष्य बने की अपेक्षा में गिन करके वो कहे उसका खजाना है तो मेरे भी खजाना होगा, उसके मंत्री हैं तो मेरे भी मंत्री होंगे, क्यों उसका राजमहल है तो मेरा भी राजमहल होगा। ऐसा कोई रंक सोचे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं होगा ना। लेकिन ऐसी मूर्खता कोई करता होगा ना, कहना जी निश्चयभाषी करता है ना। देखो निश्चयभाषी करता है कि भाई वो उन बातों में समानता, केवल ज्ञान अपने को केवल ज्ञान से सहज मानने लग गया, परंतु अपने को तो क्षयोपम रूप मति शुद्ध ज्ञान आदि का सद्भाव है। और शास्त्र में लिखा ना कि जिसके क्षयोपम ज्ञान उसके छायक नहीं होता, जिसके छायक हो उसके क्षयोपम नहीं होता। अब उनका यदि केवल ज्ञान लोगे तो केवल ज्ञान पर्याय है, तो यहां भी पर्याय से मिलाओगे तो तुम्हें मति ज्ञान है, उनमें केवल ज्ञान है तो अंतर है। अब उनके स्वभाव से और अपने स्वभाव को मिलाओ तो अंतर नहीं है, तो फिर उनकी पर्याय का क्या करें केवल ज्ञान को। तो ये बताने के लिए कि इनका केवल ज्ञान जैसा पर्याय में प्रकट हुआ है ऐसा ही अंदर में स्वभाव है, और इनका स्वभाव इनकी पर्याय में प्रकट हो गया है और हमारा स्वभाव हमारी पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है, ऐसा बताने के लिए वो बात कही थी। सो ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही छायक भाव मानते हैं, सो यही मिथ्या दृष्टि है, सो यही भूल है। ख्याल रहना, मैंने मुद्दे की बात है कि अपने को सिद्ध समान मानते हैं, अपने को वर्तमान में केवल ज्ञान से सहित मानते हैं। शास्त्रों में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है। देखो वो तो शास्त्र पर के आया है ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जितने सारे प्रश्न वो खड़ा कर रहे हैं टोडरमल जी के सामने, वो सब बराबर शास्त्र में से निकाल निकाल के बताया। शास्त्र में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है, वह शक्ति अपेक्षा से कहा है, क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है। देखो सब जीवों कह दिए ना, अब सब जीवों में अभव्य भी है, और उनका भी केवल ज्ञान स्वभाव है, सर्वज्ञत्व शक्ति उनमें भी है, लेकिन उनकी जो सर्वज्ञत्व शक्ति कभी प्रकट नहीं होगी, और भव्य की प्रकट होगी, और केवल ज्ञानी की अभी प्रकट है। तो ये जो तीनों में अंतर है, ये अंतर क्या वास्तविक नहीं है? ये अंतर तो व्यवहार से है, निश्चय से तो एक ही है, तो ये व्यवहार से है और व्यवहार झूठा है, तो ये ऐसा झूठा है क्यों चलने? जैसे मैंने झूठा है संसार आंख खोल के देखो तो झूठा कहा, कोई किसी का नहीं है, सब सब झूठी बातें हैं, बोलते कि नहीं बोलते? स्त्री पुत्र मकान जायदाद कोई किसी का नहीं है, सब झूठी बातें हैं। वहां जो झूठी बातें बोलते हैं तो कोई स्त्री नहीं है अपनी, पुत्र नहीं है अपने, ऐसा अर्थ है उसका? ये तेरे को साथ नहीं देंगे, और बारीकी में जाओ तो साथ नहीं दे सकते, तेरा सुख दुख तेरे को ही भोगना पड़ेगा, इस अर्थ में है ये झूठी बातें हैं। कैसा जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून बहेगा, आप क्या बात करते हो? हम पूरी तरह आपके साथ हैं, आप चिंता नहीं करना, ये सब सब झूठी बातें हैं। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? इसका अर्थ ये नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठी बात जो हम कह रहे हैं कि तुमको बेईमान नहीं कह रहे हैं, हम तो ये वस्तु स्वरूप की व्यवस्था को बता रहे हैं। अंतर समझ में आया क्या नहीं? जैसे वो कहते ना, ये सब नेता लोग जाकर के चुनाव में घोषणा दे, 2 रुपए किलो चावल दे देंगे, 1 रुपए किलो ये कर दे देंगे, किसानों को बिजली फ्री, फलाने को ये। तो कोई कह सकता है सब झूठी बातें हैं? कि झूठी बातें हैं माने ये झूठ बोल रहा है? नहीं, वो सत्य बोल रहा हो। वो आकर ये कर भी सकता है, वो बोलने में बेवकूफी कर सकता है तो करने में भी बेवकूफी तो कर ही सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि जब बिजली बनती है तो बिजली बनने में खर्चा तो होता है ना, तो वो खर्चा कहां से आएगा? तो किसान को फ्री में दे देगा तो गवर्नमेंट देगी, तो गवर्नमेंट कहां से लाएगी? तो किसी पर टैक्स लगाएगी, तो टैक्स लगाएगी तो वो चिल्लाएंगे। वो इतना संभव ही नहीं है, हर एक आदमी सीमा तो है। तो झूठी बातें हैं माने जो एक कोई इकोनॉमिक कहो ना अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ, वो कहेगा जो बातें बोल रहे हैं वो सब झूठी हैं। उसका अर्थ यह है कि अनप्रैक्टिकल बातें हैं। मालूम एक टेलीफोन के बढ़ाए थे ना चार्ज, तो गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं कैंसर, और बड़े कह दिया कि हमने थोड़ी बढ़ाए थे, ये तो इन लोगों ने बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, और खूब ठोक दिया और जनता खुश। अब उसने नोटिस दिया उसको, तो उनके वो जो स्वतंत्र बॉडी है और उसमें लिखा है कि ये हमें फुल पावर है, कब हम कितने रेट बढ़ाएं और घटाएं, हमने दुकान खोली है ना, तो दुकान का रेट क्या नक्की करें, हमें है पावर, तुम्हें नहीं है। गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट कौन होती है? मैं एक किताब मैंने छपाई है, मुसलमान पता है कि 20 रुपये कीमत रखूं, गवर्नमेंट नहीं 20 रुपये नहीं देते, 15 रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कह सकती है बोलो कि 15 रुपये रखनी पड़ेगी तो 5 रुपये तो गवर्नमेंट देवे? मैंने कहा ये तो 20 रुपये से कम में नहीं पड़ती है, मिलेगी नहीं। लोग कहते हैं कि हमारे टेलीफोन में हम इससे खर्चा पड़ता है, तो गवर्नमेंट यदि ये कहती है कि हम नहीं बढ़ाएं, खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे। उसने बता दिया लिखित एग्रीमेंट कि हमारे साथ ये एग्रीमेंट है कि गवर्नमेंट 2 खाते हैं, 1 नंबर 1 और 2 काल कलम है, तो पहली कलम के अनुसार तो वो गवर्नमेंट मतलब मना कर ही नहीं सकती है, उसको अधिकार ही नहीं है हमारे हस्तक्षेप करने का, और दूसरे में वो यदि करना चाहे तो वो हमसे बातचीत करे और वो पूरी बात समझे और समझ करके फिर नक्की करके फिर मना कर सकती है, और यदि करे तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, उसके माथे पड़ेगी। हमारा तो खर्चा इतना आता, हमने तो इतना बढ़ाया था, उसके बिना चल नहीं सकती, कि नहीं हम तो नहीं माने, नहीं मानोगे तो कंपनी फेल हो जाएगी, तो टेलीफोन बंद हो जाएंगे, बिजली बंद हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे नहीं मानने से वो उत्पादन बढ़ जाएगा, खेत दूना अनाज थोड़ी उगलने लगेंगे, खेत में तो जितना पैदा होगा उतना ही पैदा होगा, और जो लागत लगेगी वो लगेगी, जो खाद डलेगा, जो बीज डलेगा, जो पानी डलेगा, जो लगेगा वो जो उत्पादन की लागत है उसको कौन लाएगा? कोई नोट छापने का थोड़ी हमारे पास है, कि तुम्हें पता ही नहीं है, फटाफट माफ कर दिया, फटाफट माफ कर दिया, तुम तो वहां बैठे बैठे माफ कर दो ना सबको, कि कोई दुकानदार ऐसे नहीं ले सकता, कोई ये नहीं सकता, बैंक ऐसा नहीं लेना, बैंक इतने ज्यादा ब्याज नहीं देनी, तो बैंक फेल हो जाएंगे, बैंक खर्चे तो उनके माथे उतने मरे हुए हैं, क्यों पहले कर दिया था ना सारे बैंक कर्जे बांट दे, वसूली तो होती नहीं है, मैंने गरीबों को बांट दिया तो वसूली तो होती नहीं, तो बैंक फेल नहीं होंगे तो क्या होगा बोलो? तो तेरे हाथ में है, ऐसे ही वस्तु का स्वरूप तेरे हाथ में नहीं है, वो तो जो है वो रहेगा ना, वर्तमान में जो राग है वो झूठे हैं, राग झूठा है का मतलब राग मुक्ति का मार्ग नहीं है, मुक्ति के मार्ग में कोई हेल्प नहीं करेगा, राग तेरे के लिए सुखदायक नहीं है, दुखदायक है, इस अर्थ में झूठे हैं, वो राग नहीं है पर्याय में, ये बात झूठी नहीं है। अभी केवल ज्ञान है ये झूठी बात है, और मति ज्ञान है ये सच्ची बात है, बोलो सच्ची बात कौन है, निश्चय की कौन है, मैं आपसे पूछता हूं, ये निश्चय व्यवहार कोई नहीं समझते, बड़े बड़े पंडित ही समझते, तुम्हारी तो क्या बात करूं मैं पूछता हूं, जिस पर्याय से जो आत्मा जिस समय पर्ण में है उस पर्याय से युक्तता ही निश्चय है, और जो पर्याय नहीं है उस पर्याय से उस वक्त कहना वो उपचार है, क्योंकि वो भविष्य की अपेक्षा की है, वास्तविकता तो ये है ना। राग पर्याय से युक्त आत्मा को रागी कहना यह अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है, और सम्मा दर्शन पर्याय से युक्त आत्मा को सम्मा दृष्टि कहना ये एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है, और केवल ज्ञान से युक्त पर्याय से आत्मा को केवल ज्ञानी कहना ये शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है, व्यवहार का कथन है कि आत्मा को केवल ज्ञान है। ये शुद्ध भगवान केवली जो है वो व्यवहार से है, उन्हें केवल ज्ञान है नहीं, और तेरे को केवल ज्ञान है तथा दोनों को होगा कि दोनों को नहीं होगा ऐसा नहीं है, तेरे को नहीं है और उनको है, और तेरे को नहीं है ये निश्चय है और उनको है ये निश्चय है। थोड़ा जी देखो ये लिखा ना कितना, जैसे कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, वो कैसे मानता है देखो ये भी बहुत बड़ा धर्म है कि अंदर में तो केवल ज्ञान ही है बिल्कुल आत्मा में, ऊपर से आवरण होने से प्रकट नहीं होता है, सो यह भ्रम है, सो यह भ्रम है ना, सो यह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा मतलब वही वही भ्रम है जी कि ऊपर से अंदर अंदर तो सब हो और ऊपर हो, वो क्या कहते हैं जैसे कि सूरज है ना ऊपर से बादल आ गए इसलिए सूरज हमको नहीं दिखाई देता है, सूरज तो अंदर अंदर को प्रकाशमान विद्यमान है, ऐसा अंदर से केवल ज्ञान हो और ऊपर से कर्म के बादल आ गए हो ऐसा नहीं है, वो अंदर में केवल ज्ञान उस वक्त है ही नहीं, वो है वो तो स्वभाव है, स्वभाव है माने सर्वज्ञत्व शक्ति है, माने वो उस समय में पर्याय उसमें से प्रकट हो सकती है ऐसा है। पंडित जी ने जवाब दिया बहुत अच्छा कि यदि ऐसा माने तो क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान तो के सामने तो वज्र का पटल आ जाए तो भी उस तार की चीज वो देख लेता है, तो इतने बारीक कर्म तो कायमान बनना तो बहुत बारीक है ना सूक्ष्म, उसके आने से कैसे नहीं देखेंगे, ये सुमेरु पर्वत है ना तो कितना मोटा है 1,00,000 वजन का, अब 1,00,000 वजन का सुमेरु पर्वत के बीच में सबसे क्या है वो जो है ना सोना वोना जो कुछ भी है शास्त्र में बताया है वो केवली भगवान को दिखता हुआ क्या नहीं, तो सुमेरु पर्वत आड़े आता है तब भी उधर दिखता है क्यों, और हम यहां बैठे हैं ये बीच में सुमेरु पर्वत है और उस तरफ क्या है ये दिखता हुआ कि केवली हमें थोड़ा ऐसा करके देखना पड़ता होगा क्यों दिख जाता, तो कहते सुमेरु पर्वत जैसे वज्र का पटल आ जाए तो भी उन्हें सब दिखाई देता है केवल ज्ञान का तो ऐसा स्वरूप है, और ये जो सूक्ष्म जो कर्म का आवरण आ गया तो उससे केवल ज्ञान को नहीं दिखेगा, बाहर बाहर वालों केवल ज्ञान नहीं दिखेगा, ये मूर्खता की बात कहां से लाए, देखो पढ़ते हैं, यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटलादि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है, कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा, इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है, देखो ही लिखा ना, यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो छायक भाव है, पारिणामिक भाव उसे बोलते जो अनादि से लेकर अनंत काल तक रहता है, जीवत है पारिणामिक भाव, वो निगुण में भी है और मोक्ष में भी है, यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहे, परंतु यह तो छायक भाव है, सर्व भेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है, इसकी अनेक अवस्थाएं हैं मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप पारिणामिक भाव की कहते ना, सो वह पारिणामिक भाव नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना, सर्वदा नहीं मानना मैंने कथनचित मानना, कथनचित माने वो अपेक्षा समझना, देखो कथनचित है कथनचित नहीं है ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर वही गलती हो जाएगी, तो कथनचित है माने वो कथनचित वैसे ही मान लेगा जैसे कि बादल के पीछे सूरज है, वो कथनचित वाली अपेक्षा है कि पर्याय रूप से तो नहीं है, लेकिन ऐसी पर्याय स्वकाल में आने पर उसमें से प्रकट हो सकती है। ऐसी योग्यता, ऐसी शक्ति विद्यमान है, इसका नाम है ऐसा समझे तो उसका नाम कथनचित है। कथनचित माने वो अपेक्षा हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं ना, ये बाप भी है और बेटा भी है, कथनचित बाप है और कथनचित बेटा है, तो ऐसा नहीं समझना कि जी आधा हिस्सा बाप होगा और आधा हिस्सा बेटा होगा, इधर से ऊपर का बाप होगा इधर से बेटी। तुम कथनचित का अर्थ क्या करता है? कथनचित का अर्थ तो लगाना पड़ेगा तेरे को, क्यों? दोनों ही है, बेटा भी है और बाप भी है, तो कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ेगा ना। तो कैसे लगाना पड़ेगा कि इस बच्चे का बाप ही है और इस बुजुर्ग का बेटा ही है, ऐसा अपेक्षा तेरे दिमाग में स्पष्ट हो तो तेरा ये कहना सही है कि ये बाप भी है और बेटा भी है। ये बात तेरे ज्ञान में सही हो तो ये तेरे को कहने का अधिकार है, और ये यदि बात तेरे ज्ञान में नहीं हो तो तेरे को अधिकार नहीं है। क्या मतलब कह रहे हैं? जैसे आपने आया और आपने मेरे से कहा कि पंडित जी 1,00,000 रुपया दे देना मेरे को, ठीक है, जब चाहो ले जाना। तो जब चाहो ले जाना, ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरी बात कर सत्य है कि जब मेरे पास वो 1,00,000 रुपया रखे हों, क्यों, और उसको देने का मेरे को अधिकार हो और मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो, नहीं तो कहते जब चाहो ले जाना और फिर आप आओ तो कह जरा मैं छाबड़ा जी से पूछूंगा, क्यों? और कैसा भी मना कर देंगे तो, मना करेंगे तो कैसे दे सकता हूं? तो काय को कहा था कि जब चाहे से ले जाना, और हमने तुम्हारे घर से सौदा पक्का कर लिया और कह दिया अभी ला के देते हैं, अब तुम्हें कहने लगे। फिर जब चाहे ले जाना, ये कहने का अधिकार कब है समझ में आया कि नहीं? ऐसे चार कोई कह दे रहे, भले ही तुम दो चाय नहीं दो, लेकिन तुम ये कह रहे हो उसके पहले पीछे हासिल की गुंजाइश होना चाहिए। तुम कथनचित कह रहे हो तो कथनचित की पूरी अपेक्षा तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए, तो तुम्हें कथनचित कहने का अधिकार है। नहीं 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 नहीं, नहीं हमारे यहां से पैसा नहीं मिलेंगे, तुम्हारे संस्था से पैसा नहीं मिलेंगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे कहने का क्या अधिकार है? क्यों? तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि है कि नहीं पैसा, और देने के अधिकार ही नहीं हो, तो जैसे तुम्हें हां कहने का अधिकार नहीं है ना, ऐसे ना कहने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे ही वो कथनचित है और कथनचित नहीं है कहने का भी अधिकार नहीं है। केवल ज्ञान है आत्मा में, आत्मा केवल ज्ञान स्वाभी है, तो अपेक्षा समझो तो आप है भी कह सकते हो और अपेक्षा समझो तो नहीं है भी कह सकते हो, और अपेक्षा तुम्हारे ख्याल में नहीं हो तो तुम्हारा है कहना भी उतना ही झूठा है, जो नहीं कहना झूठा है और नहीं कहना भी उतना ही झूठा है। जिसकी सीमा में वो चीज नहीं आती है उसके हाँ और ना कहने का क्या अधिकार है? मैं आपसे क्या 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 कीमत है उसकी, बोलिए। अपनी लड़की की शादी करनी है, अपने स्मारक चाहिए है, तो क्या पूछा? हाँ पूछा, मैं पूछा है, कौन पूछा है? कोई चौकीदार से पूछ के आया हूं, उन्होंने कहा हाँ मिल जाए, बहुत सारे वाले हो जाए मिल जाएगा, तो बराबर लेके फिर कार मार फेंक दो कर दो, फिर होगा जो कुछ होगा समझ ना। तो उसका इनने कह दी थी, कह तुमने कह दी, हाँ कह दी थी, बहुत तो होती है। तो अपन क्या कहेंगे उस चपरासी से लड़ेंगे, उस वाले से लड़ेंगे कि भाई साहब इसको अधिकार है, ये मालिक है, इसको पता है कि देते हैं कि नहीं देते हैं, और देते हैं तो किसको देते हैं, और पहले किसी को दिया हुआ तो नहीं है किसी दूसरे को, और वो जगह खाली है कि नहीं, कि उस दिन हमारा शिविर तो नहीं है, ये सारी बातें इसको मालूम है। हाँ और ना कहने का अधिकार किसको है, बोलो? कि जब उसकी वो सारी चीजें आद्यो पांच जिसके ख्याल में हो, तो भले ही वो अपेक्षा बताए चाहे नहीं बताए, फटाफट हां कह देता है, फटाफट ना कह देता है। वो क्या समझता है? हां कहने में खतरा है, ना कहने में क्या खतरा है? आपने कह दिया कि नहीं, आपने हमसे पूछे बिना नहीं देना, तो पूछने का चक्कर ही क्यों रखो? सीधे ना ही कहना, क्यों चलेगा? तो वो तूने मना कैसे किया? आपने तो कहा था, तो तेरे को देने का अधिकार नहीं है, ये तेरे को कहा था हमने। ये कहा ना पूछ के देना, ये कहा एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन भेजना ऊपर देना। आश्वासन देने वाला तू कौन होता है? ये कह दे तो ऊपर से जवाब आएगा, वो मिलेगा तो कोई झगड़ा खत्म नहीं। लेकिन वो तो अब ऐसा कैसे कहे? वो तो यही शो करना चाहता है सर्वे सर्वा मैं ही हूं, तो वो आदमी ऐसा कैसे कह सकता है? क्यों? तो ऐसी बात है कि वो पीछे अपेक्षा को समझी नहीं है और मान जाएगा आत्मा सिद्ध के समान है। आत्मा केवल ज्ञानी है, आत्मा में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो कुछ ठोका जाता है। निश्चय में एक वाक्य था उसका अर्थ समझता नहीं, उसकी अपेक्षा समझना चाहिए ना। व्यवहार नए की भी अपेक्षा होती है, जो एक व्यवहार में तो ये भी है, एक घी के घड़े को घड़ा करना, घी रखा जाता है जिस घड़े को, उस मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, एक व्यवहार तो ये भी है। तो आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, एक व्यवहार ये भी है। बोलो, दो ही व्यवहार एक से है। क्यों? तो कितना फर्क है? आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र तो है, और इस व्यवहार को जो असत्यार्थ कहा है जनवाणी में, वो तो सिर्फ भेद के निषेध के लिए कहा है, विकल्प के निषेध के लिए कहा है, और घी का घड़ा होता ही नहीं है वहां, इसके लिए कहा है। दोनों में कितना फर्क है? और दोनों व्यवहार है, और दोनों का निषेध है, और दोनों को एक सजा है कि फटाफट वहां पर जो अद्भुत व्यवहार लगता है ना गुण भेद वाला, वहां घी के घड़े जैसे ठोक देता है। आत्मा पर को जानता है कि नहीं, कि नहीं व्यवहार से जानता है, व्यवहार तो झूठा है। अरे घी के घड़ा नहीं होता है, व्यवहार पर को नहीं जानता। अरे ये घी के घड़ा वाला व्यवहार नहीं है, ये वो व्यवहार है जिसके हिसाब से आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है। ये अनुच्छेद सद्भूत व्यवहार है अन्ना जी। कौन? आत्मा में केवल ज्ञान है, मतलब आत्मा पर को जानता है ये, और आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, ख्याल में आए ना? तो वो दोनों, और अभी मान लो कि दोनों में ये फर्क भी हो, क्योंकि पर की अपेक्षा से हम असद्भुत भी कहें, उपचरित भी कहें, तो भी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो अपेक्षा हमारे ख्याल में आनी चाहिए कि सभी धान वाला पर सभी चल जाएंगे ना। देखो लिखा ना, तथा शास्त्र में सूर्य का दृष्टांत दिया है, उसका उतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार कर्मोदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता। बस इतना ही लेना, वो सूरज के मेघ वैसा इतना उदाहरण, क्योंकि उदाहरण सर्वांग लगता नहीं। तथा ऐसे भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्य में प्रकाश रहता है वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार मिलता नहीं है। अब बताओ, देखो लिखा है सूर्य जैसा लिखा, सूर्य जैसा लिखा, सूर्य जैसा लिखा, लिखा हो तो लिखा रहे दो ना, मिलान तो करना पड़ेगा ना। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका खजांची है और उसकी रोकड़ में 1 लाख रुपए ही है, 10 लाख रुपए है ही नहीं। अब आपने देख दिया कि 5 लाख रुपया दे दो, दे देगा वो? दे देगा? तो दे देना चाहिए, हम अथॉरिटी है लिखकर ऑर्डर देने का, लिखा हुआ है कि हमें अथॉरिटी, और वो जो हम लिख दें उसे देना चाहिए। लेकिन दे कहां से दे? कि तुम जो अथॉरिटी हो, अब अथॉरिटी ने बेवकूफी करी इसके लिए वो बेवकूफी नहीं करे, अरे वो कर ही नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं। क्यों? उसका दंड क्या भोग है? वो भोगे का सवाल ही कहां है? वो तो कहता है मैं तो आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूं, लेकिन 5 लाख मेरे पास होना चाहिए ना। अब रोकड़ में तो देखो, समझदारी तुम्हारी थी कि जब तुमने इसे लिखा था तो उसके पहले तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम्हारी रोकड़ में कितना है। अब चेक काट दो, और बैंक में तुम्हारे खाते में नहीं हो तो बैंक दे देता है, बल्कि तुम्हारा चेक वापस हो जाए तो तुम्हारे लिए जेल होती है। चेक वापस आ, तुम्हारी लिए जेल होती है। तो ये अथॉरिटी ने उसके पास लाख वहां पर हैं और 5 लाख का देने का लिख दिया, तो उसे जेल होना चाहिए, खजांची को कुछ नहीं होगा। क्यों? संसार की जेल उसे होती है, कमल में केवल ज्ञान मान लिया, और केवल ज्ञान तो वहां है नहीं।
अब तुम्हारा निश्चय नहीं कहता कि केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान निश्चय नहीं कहता, तुम्हारा कौन न कहता हो लेकिन वहां तो मति ज्ञान है, केवल ज्ञान है नहीं, राग है भी तो रागता है भी, क्या कर लेगा कोई, तुम कितने नए लगा रहे, अब तुम सब देखो तुम अपने नयों में देखो कहीं ना कोई गड़बड़ी तुम्हारी समझ में हुई है, ना तो नयों में गड़बड़ी हो सकती है ना जनागम में हो सकती है, ये जो तुम्हारी बात है वो ऐसी है इससे मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं तुम्हारी समझ में कोई गड़बड़ी है, अपनी समझ को तुम्हें सुधारना पड़ेगा। देखो लिखा तो क्या लगाना पड़ेगा कि सूर्य का वो दृष्टांत सर्वांग लगता नहीं, कि टेढ़े मुझी ने निकाली ना अपनी अकल से कि ऐसी समस्या फंस जाए तो ऐसा कहना कि दृष्टांत जरूर दिया है शास्त्र में लेकिन दृष्टांत सर्वांग नहीं लगता है, बस इतना ही समझना, बस इतना सा। यहां कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो केवल ज्ञान आवरण किस लिए कहते हो, अब भाषा पर लड़ने, भाषा तेरी भाषा पर लड़ने से क्या मतलब है, इसका अर्थ तो दे देना होता है, दे देना होता है लेकिन वहां पैसा है ही नहीं ना, इसकी बहस से क्या होगा, बोलिए आप, लोग कहते हैं ना मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं फिर भी आईएएस ऑफिसर करते नहीं, लटका देते हैं और झटका मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कुछ नहीं है, वो बेचारे ये कहते हैं कि आप जो आज्ञा दे रहे हो प्रैक्टिकल कैसे होगा बता दो, कहां से दे दें, कैसे दे दें, कैसे कर दें, कि तुम्हें लिखी वैसे हम भी लिख दें लेकिन वहां होगा कैसे, हम तो इसके विशेषज्ञ हैं, हम तो इसकी नस नस जानते हैं, क्यों यदि ऐसी बिल्कुल सच्ची घटना घटी, नाम नहीं लेते बिना नाम लिए बताता हूं कि क्या एक किताब छपानी है तो कितना खर्चा होगा, तो मैंने बताया कि इतना होगा, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं आप सेठ जी बोले नहीं, नहीं आप तो कह, आप तो कह दो इतना होगा बस, बाकी मैं दे दूंगा, बाकी मैं दे दूंगा लेकिन आप इतना कह दो, पांच रुपये में छपेगी नहीं, दो रुपये में छपे, दो रुपये बोल दो आप तो बाकी मैं दे दूंगा। मैंने कहा कि आप तो दे दोगे लेकिन ये कीमत तो पांच रुपये लगेगी ना इसकी, तो पांच बताना थी, दो कैसे बताऊंगा, तो नहीं माने साहब, मेरे बोलने पहले दो बोल दिया। गुरुदेव के सामने का किस्सा है, और जो सामने जिस वजह से वो बोल रहे थे वो सामने वालों ने बताया कि यदि ये कहते हैं कि पांच दो रुपये में बनेगी तो इनकी ये किताब दूसरी लाके पेश कर दी मेरी किताब, एक किताब तो इससे छोटी है और ये तीन में कम है। मुझे भी बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा अब उनके सामने, अब मैं ये कहूंगा साहब ये सेठ जी ने कहलाई थी इसलिए मैंने कह दी, सेठ जी ये कहने से कह दी, मैंने उनसे कहा कि सेठ जी ये अपनी अकल अपने पास रखो है? आपको फ्री में बांट देना ना, लेकिन जो इसकी कीमत बाजार में लगेगी पूछेगा कोई तो हम तो वो ही बताएंगे, नहीं नहीं वो इतनी बताओगे तो फिर वो अपने को देते नहीं छपाने को, वो अपन को छपाना है, अपन को छपाना ऐसे क्या फर्क पड़ता, लेकिन बात तो सच्ची सच्ची होगी ना, ऐसे तो हाँ ये माफ कर देंगे, ये छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये क्या होता है, बोझ दल में बैठ के सब बैठे बोलते रहते ना, और जब भी आईएएस ऑफिसर समझाते हैं तब अकल में कुछ आती है तो कहते हैं कि साहब वो तो टैक्स तो लगाना ही पड़ेंगे, नहीं उसके बिना ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे ये भाषा बोलने लगते हैं गद्दी पे आते ही, और वहां जाकर की मेरी भाषा बोलने लगते हैं, तो ऐसे ही कहते हैं कि इसके आईएएस ऑफिसर हम हैं, तुम मिनिस्टर में जैसी भाषा बोलते हो नहीं? क्या नेता बन के मिनिस्टर में जैसी भाषा बोलते हो, अरे उसकी कैसी संगति है वो तो बैठा लो, पहले अपेक्षा लगाओ कैसे बैठेगा कैसे नहीं बैठेगा, पूरा प्लानिंग करके हम तो एक बात तो उसके हिसाब से बोलते हैं, और तुमको तो बस बोलना है हे है छोड़ दो ऐसा नहीं है, बस कह दो नहीं जानते हो, बैठेगी बैठेगी नहीं बैठेगी नहीं बैठेगी नहीं जानता है तो नहीं जानता, हमने कह दिया कि आत्मा पर को नहीं जानता तो नहीं जानता है, बस झगड़ा खत्म, इस दोनों प्रति से काम चलता है, आत्मा पर को नहीं जानता तो नहीं जानता है, केवल ज्ञान तो पर को जानता ही नहीं है, ख्याल में आए ना, तो तुम्हारे क्या दोनों प्रति से काम चलेगा, मैं आपसे पूछता हूं कि नहीं जानता है तो आप यहां से जाते हो तो दरवाजे की तरफ से क्यों जाते हो, यहीं से निकल जाओ ना बाहर, मैं तो तुम्हें ये दीवार तो दिखती ही नहीं, तो पर नहीं दिखती है तो उन्हें गेट दिखता है, तुम ऐसे 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 तेज चले हो गए सांप जैसे क्यों जाते हो, सीधे चले जाओ, दीवार में क्यों नहीं चले जाते हो, वहां कैसे चले जाए, सामने दीवार नहीं थी, सीधे रहे इतनी बड़ी अंडा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो इसका जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, जो तुम्हारे कह देने से काम चल जाएगा, जो प्रैक्टिकल चीज सामने होगी उसे कहना पड़ेगा, तो वो नए लगता है, कैसे लगता है, उसकी क्या अपेक्षा होती है, कैसे अपेक्षा लगाई, जब तक पूरी बात आपके ख्याल में नहीं हो तब तक आप हाँ और ना नहीं कह सकते, समझ रहे हैं ना, भले ही आप पूरी बात उस वक्त बताएं चाहे नहीं बताएं, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो उसको पूरी बात आपके ध्यान में होना चाहिए, जब आप ये कह रहे हैं कि मान लो अटल बिहारी वाजपेयी गए हाँ ठीक है काश्मीर हम तुमको दे देंगे, क्यों कह सकते हैं, इतना हो हल्ला किया लेकिन अंत में हुआ क्या सुरेश चंद जी, हम दोनों जने गंभीरता से इसको हल करने की कोशिश करेंगे और इस प्रक्रिया को तेजी लाएंगे, अरे वाह बहुत बढ़िया निर्णय हुआ तेजी लाएंगे, और क्या कर सकते थे, उपलब्ध होने लायक जानते थे कि कुछ होने वाला नहीं है, न ये छोड़ने वाले हैं न उनके हाथ में छोड़ना है, ये 2 रुपया तो छोड़ नहीं सकते हैं, 2 रुपया छोड़ते हैं तो पीछे वाले टांग खींचता है, ये काश्मीर दे देंगे उन्हें, न ये दे सकते हैं न वे छोड़ सकते हैं, तो और होना क्या था, बस हम गंभीरता से करेंगे और गहराई से विचार करेंगे, ज्यादा बातचीत करेंगे, इसके अलावा क्या दे सकते थे, जब प्रैक्टिकल थिंकिंग करोगे तो, और नहीं करोगे तो बस खत्म, ये कर देंगे हम, ये कर देंगे, ये निपटा देंगे, काश्मीर निपटा देंगे, फलाना निपटा देंगे, कुछ भी
सुधा वाली का ये जिम्मेवारी।